आवाज के सभी श्रोताओं को पिट्सबर्ग से अनुराग शर्मा का नमस्कार। सुनो कहानी में आज हम लेकर आए हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी वैराग्य।
कविताओं, कहानियों, गीतों, गजलों का नायाब ब्लॉग, लॉग ऑन करें www.hindyugm.com। हिंदी युग्म, अपनी बात अपनी भाषा में।
मुंशी शालिग्राम बनारस के पुराने रईस थे। जीवन वृत्ति वकालत थी और पैतृक संपत्ति बहुत अधिक थी। दशाश्वमेध घाट पर उनका व्यभान्वित ग्रह आकाश को स्पर्श करता था। उदार ऐसे कि 25-30 हजार की वार्षिक आय भी व्यय को पूरी न होती थी। साधु ब्राह्मणों के बड़े श्रद्धावान थे। जो कुछ कमाते वह ब्रह्म भोज और साधुओं के भंडारे एवं सत्कार्य में व्यय हो जाता। नगर में कोई साधु महात्मा आ जाए वह मुंशी जी का अतिथि होता था। संस्कृत के ऐसे विद्वान कि बड़े बड़े पंडित उनका लोहा मानते थे। वेदांत सिद्धांत के वे अनुयायी थे। उनके चित्त की प्रवृत्ति वैराग्य की ओर थी। मुंशी जी को स्वभावतः बच्चों से बहुत प्रेम था। मोहल्ले भर के बच्चे उनके प्रेमवारी से अभिसिंचित होते थे। जब वे घर से बाहर निकलते तब बालकों का एक दल उनके साथ होता था। एक दिन कोई पाषाण हृदय माता अपने बच्चे को मार रही थी। लड़का बिलख बिलख कर रो रहा था। मुंशी जी से न रहा गया, दौड़े, बच्चे को गोद में उठा लिया और स्त्री के सम्मुख अपना सिर झुका दिया। स्त्री ने उस दिन से अपने लड़के को न मारने की शपथ खा ली। जो मनुष्य दूसरों के बालकों का ऐसा स्नेही हो वो अपने बालक को कितना प्यार करेगा, सो अनुमान से बाहर है। जब से पुत्र पैदा हुआ मुंशी जी संसार के सब कार्यों से अलग हो गए। कहीं वे लड़के को हिंडोले में झुला रहे हैं, कहीं वे उसे एक सुंदर सैर गाड़ी में बिठाकर स्वयं खींच रहे हैं। एक क्षण के लिए भी उसे अपने पास से दूर नहीं करते थे। बच्चे के स्नेह में वे अपने को भूल गए थे। सुवामा ने लड़के का नाम प्रताप चंद्र रखा। जैसा नाम वैसा ही गुण। वह अत्यंत प्रतिभाशाली और रूपवान था। जब बातें करता तो सुनने वाले मुग्ध हो जाते। भव्य ललाट दमक दमक करता था। अंग ऐसे पुष्ट कि द्विगुण डील वाले लड़कों को भी वह कुछ न समझता था। इस अल्प आयु में ही उसका मुखमंडल ऐसा दिव्य और ज्ञानमय था कि यदि वह अचानक किसी अपरिचित मनुष्य के सामने खड़ा हो जाए तो वह विस्मय से ताकने लगता था। इस प्रकार हंसते खेलते 6 वर्ष व्यतीत हो गए। आनंद के दिन पवन की भांति सन्न से निकल जाते हैं और पता भी नहीं चलता। दुर्भाग्य के दिन और विपत्ति की रातें काटे नहीं कटती। प्रताप को पैदा हुए अभी कितने दिन हुए। बधाई की मनोहारिणी ध्वनि कानों में गूंज रही थी कि 6ठी वर्षगांठ आ पहुंची। 6ठी वर्षगांठ दुर्दिनों का श्री गणेश था। मुंशी शालिग्राम का सांसारिक संबंध केवल दिखावटी था। वह निष्काम और निस्संबद्ध जीवन व्यतीत करते थे। यद्यपि प्रकट वह सामान्य संसारी मनुष्यों की भांति संसार के क्लेशों से क्लेशित और दुखों से हर्षित दृष्टिगोचर होते थे, तथापि उनका मन सर्वथा उस महान और आनंदपूर्ण शांति का सुख भोग करता था जिस पर दुख के झोंकों और सुख की थपकियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। माघ का महीना था। प्रयाग में कुंभ का मेला लगा हुआ था। रेलगाड़ियों में यात्री रुई की भांति भर भर कर प्रयाग पहुंचाए जाते थे। 80-80 बरस के वृद्ध, जिनके लिए वर्षों से उठना कठिन हो रहा था, लंगड़ाते, लाठियां टेकते, मंजिल तय करते प्रयागराज को जा रहे थे। बड़े बड़े साधु महात्मा, जिनके दर्शनों की इच्छा लोगों को हिमालय की अंधेरी गुफाओं में खींच ले जाती थी, उस समय गंगा जी की पवित्र लहरों से गले मिलने के लिए आए हुए थे। मुंशी शालिग्राम का मन भी ललचाया। सुवामा से बोले, कल स्नान है। सुवामा, सारा मोहल्ला सूना हो गया, कोई मनुष्य नहीं देखता। तुम चलना स्वीकार नहीं करती? नहीं तो बड़ा आनंद होता। ऐसा मेला तुमने कभी देखा ना होगा। सुवामा, ऐसे मेले से मेरा जी घबराता है। मुंशी, मेरा जी तो नहीं मानता। जब से सुना कि स्वामी परमानंद जी आए हैं तब से उनके दर्शन के लिए चित्त उद्विग्न हो रहा है। सुवामा पहले तो उनके जाने पर सहमत ना हुई, पर जब देखा कि ये रोके ना रुकेंगे तब विवश होकर मान गई। उसी दिन मुंशी जी 11 बजे रात को प्रयागराज चले। चलते समय उन्होंने प्रताप के मुख का चुंबन किया और स्त्री को प्रेम से गले लगाया। सुवामा ने उस समय देखा कि उनके नेत्र सजल हैं। उसका कलेजा धक से हो गया। जैसे चैत्र मास में काली घटाओं को देखकर कृषक का हृदय कांपने लगता है, उसी भांति मुंशी जी के नेत्रों को अश्रुपूर्ण देखकर सुवामा कंपित हुई। अश्रु की वे बूंदें वैराग्य और त्याग का अगाध समुद्र थी। देखने में वे जैसे नन्हे जल के कण थी, पर थी बड़ी गंभीर और विस्तीर्ण। उधर मुंशी जी घर के बाहर निकले और इधर सुवामा ने एक ठंडी श्वास ली। किसी ने उसके हृदय में कहा, अब तुझे पति के दर्शन न होंगे। एक दिन बीता, दो दिन बीते, चौथा दिन आया और रात हो गई। यहां तक कि पूरा सप्ताह बीत गया, पर मुंशी जी ना आए। अब तो सुवामा को आकुलता होने लगी। तार दिए, आदमी दौड़ाए, पर कुछ पता न चला। दूसरा सप्ताह भी इसी प्रयत्न में समाप्त हो गया। मुंशी जी के लौटने की जो कुछ आशा शेष थी, वह सब मिट्टी में मिल गई। मुंशी जी का अदृश्य होना उनके कुटुंब मात्र के लिए ही नहीं, वरन सारे नगर के लिए शोकपूर्ण घटना थी। हाटों में, दुकान पर, हाथाइयों में, अर्थात चारों ओर यही वार्तालाप होता था। जो सुनता था वही शोक करता, क्या धनी क्या निर्धन, यह शौक सबको था। उनके कारण चारों ओर उत्साह फैला रहता था। अब एक उदासी सी छा गई थी। जिन गलियों से वे बालकों का झुंड लेकर निकलते थे, वहां अब धूल उड़ रही थी। बच्चे बराबर उनके पास आने के लिए रोते और हट करते थे। उन बेचारों को ये सुध कहां कि अब प्रमोद सभा भंग हो गई है। उनकी माताएं आंचल से मुख ढांप कर रोती, मानो उनका सगा प्रेमी मर गया है। वैसे तो मुंशी जी के गुप्त हो जाने का रोना सभी रोते थे, परंतु सबसे गाढ़े आंसू उन आढ़तियों और महाजनों के नेत्रों से गिरते थे, जिनके लेने देने का लेखा भी हुआ नहीं था। उन्होंने 10-12 दिन जैसे तैसे करके काटे, पश्चात एक एक करके लेखा के पत्र दिखाने लगे। किसी ब्रह्म भोज में 100 रुपए का घी आया है और मूल्य नहीं दिया, कहीं से 200 रुपए का मैदा आया, बजाज का 1000 का लेखा है, मंदिर बनवाते समय एक महाजन से 20,000 ऋण लिया, वह अभी तक वैसे ही पड़ा हुआ है। लेखा की तो यह दशा थी, सामग्री की यह दशा कि एक उत्तम ग्रह और तत्संबंधिनी सामग्रियों के अलावा कोई वस्तु न थी जिससे कोई बड़ी रकम खड़ी हो सके। भू संपत्ति बेचने के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय न था जिससे धन प्राप्त करके ऋण चुकाया जाए। बेचारी सुवामा सिर नीचा किए हुए चटाई पर बैठी थी और प्रतापचंद्र अपने लकड़ी के घोड़े पर सवार आंगन में टक टक कर रहा था कि पंडित मोटेराम शास्त्री कुल पुरोहित मुस्कुराते हुए भीतर आए। उन्हें प्रसन्न देखकर निराश सुवामा चौंक कर उठ बैठी, शायद यह कोई शुभ समाचार लाए हैं। उनके लिए आसन बिछा दिया और आशा भरी दृष्टि से देखने लगी। पंडित जी आसन पर बैठे और सुंघनी सूंघते हुए बोले, तुमने महाजनों का लेखा देखा? सुवामा ने निराशापूर्ण शब्दों में कहा, हां देखा तो। मोटेराम, रकम बड़ी गहरी है। मुंशी जी ने आगा पीछा कुछ ना सोचा, अपने यहां कुछ हिसाब किताब ना रखा। सुवामा, हां अब तो रकम गहरी है, नहीं तो इतने रुपए क्या एक एक भोज में उठ गए हैं। मोटेराम, सब दिन समान नहीं बीतते। सुवामा, अब तो जो ईश्वर करेगा सो होगा, क्या कर सकती हूं। मोटेराम, हां ईश्वर की कृपा तो मूल ही है, मगर तुमने भी कुछ सोचा है। सुवामा, हां गांव बेच डालूंगी। मोटेराम, राम राम ये क्या कहती हो, भूमि बिक गई तो फिर बात क्या रह जाएगी, भला पृथ्वी हाथ से निकल गई तो तुम लोगों का निर्वाह कैसे होगा। सुवामा, हमारा तो ईश्वर ही मालिक है, वही बेड़ा पार करेगा। मोटेराम, ये तो बड़े अफसोस की बात होगी कि ऐसे उपकारी पुरुष के लड़के बाले दुख भोगें। सुवामा, ईश्वर की यही इच्छा है तो किसी का क्या बस। मोटेराम, भला मैं एक युक्ति बता दूं, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सुवामा, हां बताइए, बड़ा उपकार होगा। मोटेराम, पहले तो एक दरख्वास्त लिख के कलेक्टर साहब को दे दो कि माल गुजारी माफ की जाए, बाकी रुपए का बंदोबस्त हमारे ऊपर छोड़ दो, हम जो चाहेंगे करेंगे, परंतु इलाके पर आंच ना आने पाएगी। सुवामा, कुछ प्रकट भी तो हो, आप इतने रुपए कहां से लाएंगे। मोटेराम, तुम्हारे लिए रुपए की क्या कमी है, मुंशी जी के नाम पर बिना लिखा पढ़ी के 50,000 रुपए का बंदोबस्त हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। सच तो यह है कि रुपया रखा हुआ है, बस तुम्हारे मुंह से हां निकलने की देर है। सुवामा, नगर के भद्र पुरुषों ने एकत्र किया होगा। मोटेराम, हां बात की बात में रुपया इकट्ठा हो गया, साहब का इशारा बहुत था। सुवामा, कर मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र मुझसे न लिखवाया जाएगा और मैं अपने स्वामी के नाम ऋण नहीं लेना चाहती हूं, मैं सबका एक एक पैसा अपने गांव से ही चुका दूंगी। यह कहकर सुवामा ने रुखाई से मुंह फेर लिया और उसके पीले तथा शोकान्वित बदन पर क्रोध सा झलकने लगा। मोटेराम ने देखा कि बात बिगड़ना चाहती है तो संभल कर बोले, अच्छा जैसी तुम्हारी इच्छा, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है, मगर यदि हमने तुमको किसी प्रकार का दुख उठाते देखा तो उस दिन प्रलय हो जाएगा, बस इतना समझ लो।
सुवामा, तो आप क्या यह चाहते हैं कि अपने पति के नाम पर दूसरों की कृतज्ञता का भार रखूं? मैं इसी घर में जल मरूंगी, अनशन करते करते मर जाऊंगी, पर किसी की उपकृत न बनूंगी।
मोटेराम, छी छी, तुम्हारे ऊपर निहोरा कौन कर सकता है? कैसी बात मुंह से निकालती हो? ऋण लेने में कोई लाज नहीं है। कौन ऐसा रईस है जिस पर लाख दो लाख का ऋण ना हो?
सुवामा, मुझे विश्वास नहीं होता कि इस ऋण में निहोरा है।
मोटेराम, सुवामा तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई? भला सब प्रकार के दुख उठा लोगी, पर क्या तुम्हें इस बालक पर दया नहीं आती?
मोटेराम की यह चोट बहुत कड़ी थी। सुवामा सजल नयना हो गई। उसने पुत्र की ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा। इस बच्चे के लिए मैंने कौन कौन सी तपस्या नहीं की, क्या उसके भाग्य में दुख ही बदा है? जो अमोला जलवायु के प्रखर झोंकों से बचाता जाता था, जिस पर सूर्य की प्रचंड किरणें न पड़ने पाती थी, जो स्नेह सुधा से अभी सिंचित रहता था, क्या वह आज इस जलती हुई धूप और इस आग की लपट में मुरझाएगा?
सुवामा कई मिनट तक इसी चिंता में बैठी रही। मोटेराम मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि अब सफलीभूत हुआ। इतने में सुवामा ने सिर उठाकर कहा, जिसके पिता ने लाखों को जिलाया खिलाया, वह दूसरों का आश्रित नहीं बन सकता। यदि पिता का धर्म उसका सहायक होगा तो वह स्वयं 10 को खिलाकर खाएगा। लड़के को बुलाते हुए कहा, बेटा तनिक यहां आओ, कल से तुम्हारी मिठाई दूध घी सब बंद हो जाएंगे, रोगे तो नहीं? ये कहकर उसने बेटे को प्यार से बिठा लिया और उसके गुलाबी गालों का पसीना पोंछकर चुंबन कर लिया।
प्रताप, क्या कहा, कल से मिठाई बंद होगी? क्यों, क्या हलवाई की दुकान पर मिठाई नहीं है?
सुवामा, मिठाई तो है, पर उसका रुपया कौन देगा?
प्रताप, जब हम बड़े होंगे तो उसको बहुत सारा रुपया दे देंगे। चल टख टक, देख मां कैसा तेज घोड़ा है।
सुवामा की आंखों में फिर जल भराया। हा हंत, इस सौंदर्य और सुकुमारता की मूर्ति पर अभी से दरिद्रता की विपत्तियां आ जाएंगी। नहीं नहीं, मैं स्वयं सब भोग लूंगी, परंतु अपने प्राण प्यारे बच्चे के ऊपर आपत्ति की परछाई तक न आने दूंगी। माता तो यह सोच रही थी और प्रताप अपने हठी और मुंहजोर घोड़े पर चढ़ने में पूर्ण शक्ति से लीन हो रहा था। बच्चे तो मन के राजा होते हैं। अभिप्राय यह कि मोटेराम ने बहुत जाल फैलाया, विविध प्रकार का वाक्चातुर्य दिखलाया, परंतु सुवामा ने एक बार नहीं करके हां न की। इसकी इस आत्मरक्षा का समाचार जिसने सुना धन्य धन्य कहा। लोगों के मन में उसकी प्रतिष्ठा दूनी हो गई। उसने वही किया जो ऐसे संतोषपूर्ण और उदार हृदय मनुष्य की स्त्री को करना उचित था। उसके 15वें दिन इलाका नीलामी पर चढ़ा। 50,000 रुपए प्राप्त हुए। कुल ऋण चुका दिया गया। घर का अनावश्यक सामान बेच दिया गया। मकान में भी सुवामा ने भीतर से ऊंची ऊंची दीवारें खिंचवाकर 2 अलग अलग खंड कर दिए। एक में आप रहने लगी और दूसरा भाड़े पर उठा दिया। धन्यवाद।
कविता कहानी बाल रचना गीत संगीत सुनने के लिए लॉग ऑन करें हिंदयुग्म.com।